प्रणाम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13/11/13 में दोपहर 2:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम राम राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
के परिवार में किसी रोग मरने पर वह भगवान से बिना चला गया, मिले बिना चला गया, इसका बहुत दुख होता है। तो बात तो ठीक ही है। ये बताया रामायण में भी वो सोच नहीं आए, राजा दशरथ सोच नहीं आए, ब्राह्मण होकर अपने धर्म का पालन नहीं करें वो सोचनीय है, क्षत्रिय होकर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र वो होकर अपने धर्म का पालन नहीं करे तो वो सोचनीय है। और सोई भी सोचिए सोई वो सब पता सोचनीय है जो भगवान का भक्त नहीं होता। तो ऐसे उस चिंता के विषय है तो दुख होता है तो ठीक ही है। और जिंदा रहने पर भी भजन में और रुचि नहीं है, नहीं लगते। यह अगर वर्षों बीत जाने पर मन से वह दुख मिटता नहीं कि मनुष्य जन्म मेरा तेरा विश्वास मेरा तेरा स्वार्थ में गमा कर चला गया। बार बार ये ख्याल आता है कि जिस परिवार में हमने जन्म लिया उस परिवार में कोई भी व्यक्ति की दुर्गति न हो, मानव ये मेरा कर्तव्य है। देखो चिंता शोक तो करना नहीं चाहिए, उसका दुख है कि वो बिना भजन किए चला गया। तो जिस परिवार में होते उसी परिवार की क्यों चिंता करते हो? चिंता करनी चाहिए दुनिया में कोई भी भगवत प्राप्ति बिना चला गया उस दुख होना चाहिए। परिवार में चला गया उसका दुख होता है तो ये ममता है। ममता रहित होना चाहिए साधक को। हमारे संप्रदाय में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में ऐसा चला गया तो ये ममता है ना, इस ममता का तो त्याग करना है। संसार में जन्म लेकर के भगवान का भजन नहीं करता, ये रामायण में सभी विधि वो सोचने लायक है। पर सोचने लायक ये क्यों है कि राजा दशरथ सोचने लायक नहीं है, ये कहने में तात्पर्य है। उसकी चिंता शोक करना इसमें तात्पर्य नहीं है। दशरथ जी महाराज 4 दिन के पुत्र हुए भगवान राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण शत्रुघ्न, ऐसे दिन के पुत्र हुए। और वो भगवान के भक्त थे पहले, फिर भी भगवान के वरदान मांगा है अपने पुत्र विषयक स्नेह का, तो वो सोचनीय नहीं है। उसका तो अत्यंत स्नेह है, अत्यंत प्रेम है। इस विषय को लेकर कहा है इसका दुख होता है तो इसमें ममता अंश है वो ठीक नहीं है, वो त्याग देना चाहिए। संसार में कोई भी भगवान का भजन नहीं करता उसका दुख होना चाहिए मन में कि देखो इस शरीर को पाकर के भजन नहीं करता है। मनुष्य शरीर मिल गया वो भी भारतीय संस्कृति में, वो भी भर कलयुग के समय इस भूमंडल पर, उसमें भी गंगा जमुना के बीच का भाग तो अंतर्वेद कहलाता है, इसमें रहकर और भगवत के भजन बिना चला गया तो ये एक दुख की बात है। परंतु दुख की वो चिंता की बात नहीं है। दुख दो तरह का होता है, एक तो अपने व्यक्तिगत आफत का दुख होता है, एक समुदाय का दुख होता है। तो समुदाय का दुख दुख नहीं होता है, वो एक विचार होता है कि भाई सबके सब भगवान में लग जाए, दुनिया मात्र सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ये भाव रखना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी निरोग और आनंद मंगल करते रहे, ये अपेक्षा है सबके भक्त, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, ऐसा विचार रहना चाहिए। इस विचार से क्या होगा, उस प्रगति उसकी व्यक्ति की चाल होगी, सबका कल्याण हो, स्वतः स्वाभाविक सबका हित हो, ऐसा हित का विचार रखना है, वो उत्तम है। उसको गीता ने कहा है, ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, परमात्मा की प्राप्ति के विषय में कहा गया सर्वभूत हिते रताः, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा जिसका भाव है, वो भाव है, वो मतलब है उससे शोषण का, चिंता का, दुख का बात नहीं है। अब दुख हमारा काम सिद्ध नहीं हुआ, मनुष्य सबका कल्याण नहीं हुआ, तो ऐसा भाव रखना बड़ा बढ़िया है, परंतु मेरे परिवार में, मेरे वंश में हो गया, ये इतना भाव जरा छोड़ देना, सबका सब कल्याण हो, सबका, बैरी का भी कल्याण होना चाहिए। देखो ये बात एक मार्मिक बात बतावे, आप हिंदू परिवार में हैं, तो हिंदू परिवार की चिंता होती है, तो क्या भगवान के संतान हिंदू ही है, मुसलमान संतान नहीं है, क्या ईसाई भगवान के संतान नहीं है, क्या बौद्ध भगवान के संतान नहीं है, क्या पारसी भगवान के संतान नहीं है, क्या यहूदी भगवान के संतान नहीं है, क्या ये सबके सब भगवान के संतान है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत मात्र जीव, पशु पक्षी वृक्ष लता धूप घास जल सर थल सर नव सर जितने गए अंडज स्वेदज जलायुज उद्भिज चार खान 84 लाख जीव, ये सब के सब परमात्मा के अंश है, सबका कल्याण होना चाहिए। ऋषिकेश में वहां एक दिन ऐसा प्रसंग चला तो लोग कहने लगे कि हमारा कल्याण आप कर लें, गोविंदा जी थे वो बैठे थे, उनका ही सत्संग हो रहा था, गीता प्रेस के उत्पादक संस्थापक वो संरक्षक संचालक सब कुछ थे गीता प्रेस, उन एक व्यक्ति का ही, तो उनसे कहा कि महाराज आप हमारा कल्याण कर दें, तो वे बोले कल्याण करने की सामर्थ्य हमारे में नहीं है, कल्याण भगवान कर सकते, मनुष्य क्या कल्याण करे, और कल्याण करना ही होगा तो वह जंगल में अड़ूसा बहुत खड़ा है, तो वे कल्याण करना ही हो तो अड़ूसाकार वृक्षों का पहले करना चाहिए, ये बेचारे साधन कर नहीं सकते, तुम लोग साधन कर सकते हो, तुम्हारी क्या चिंता है, तुम करो अपना साधन, तो पहले पहला नंबर तो इनका आएगा, वो जो साधन कर नहीं सकते है, दया होती तो उन पर होनी चाहिए, आप स्वयं अपना कल्याण कर सकते हैं, उनकी दया की क्या बात है, तो जो कल्याण कर सकते हैं उनके लिए क्या चिंता करें, चिंता करें तो ऐसा ही करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आता है, वे चिंता करते हैं अधिक धनवानों की, कसाईयों की, महान मूर्खों की, जगाईर मधाई कसाई थे, तो वो हरिदास स्वामी ने कितना कष्ट सहा तुम्हारा कल्याण हो जाए, वो लगे मारने, मुसलमान थे कसाई थे, कि मेरे को मारो बने तुम, कहे हरि बोल, कह दो तुम, कह दो ऐसा हरि बोल, वो मारते हैं कोड़ों से, और वो कहते हैं तुम्हारी बोल कर, सब शरीर को लोहान कर देते हैं, तो भी कहते हरि बोल, बोलो भगवान का भजन, बोलो भगवान का नाम लो, वो सर्वभूत ही तेरा था, प्राणी मात्र के हित में रत रहते हैं, इनका कल्याण कैसे हो, तो अच्छे पुरुष कहते हैं कि इनका कल्याण देखो अत्यंत पंडित का कल्याण नहीं होता, अत्यंत दरिद्री का कल्याण नहीं होता, अत्यंत रोगी का कल्याण नहीं होता, अध्यक्ष लक्ष्मीवान श्रीवान उनका कल्याण नहीं होता। तो चिंता तो इन लोगों की होनी चाहिए कि इनका कल्याण कैसे हो। कारण के धनी ज्यादा होता है उसे घमंड होता है, तो घमंडी आदमी वो कैसे होगा। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल दो लोग शोक दायक अभिमाना, तो अभिमान भगवान को सुहाता नहीं, वो अभिमान उनके बना हुआ। अत्यंत तो दरिद्री की चिंता रहती है खाने पीने की, इसकी भगवान से चिंतन नहीं करता। अत्यंत तो दरिद्री है, अत्यंत रोगी है, तो आता मैं ठीक हो जाऊं फिर मेरी बीमारी मिट जाए, इस चिंतन में रहता है, तो भगवान का चिंतन नहीं करता। अत्यंत पंडित होता है, उसके अभिमान होता है कि मैं कितना ऊंचा पंडित हूँ संसार में, देखो मेरे सामने मेरे समान कौन पंडित है ऐसा, तो उस गर्व से उसका कल्याण नहीं होता है। महाराष्ट्र में एक पंडित थे, क्या नाम था, हाँ मोरारी पंत थे। तो पंत वो बड़े विद्वान मानते थे अपने को कि मैं बड़ा विद्वान हूँ ऐसा मानते थे। तो एक दिन जा रहे थे तो एक वृक्ष के टहनी पर तीन प्रेत बैठे थे ब्रह्म राक्षस। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अपने एक जगह खाली है, तीन बैठे एक जगह और बैठे जैसा है, तो ऐसा कौन आएगा। कहते ये मोरारी पंडित ये आएगा, ब्रह्म राक्षस बनेगा, तो ये जगह उनके लिए रिजर्व है, वो आएगा यहाँ। ये और पंडित जी ने सुनी, बड़ा दुख हुआ, फिर भगवान के शरण गए और भक्त बन गए। तो ये अति अधिक है ना, जो धनवान अधिक है, पंडित अधिक है, दरिद्र को हो तुम ज्ञान को ज्ञान नहीं होता। तो इसमें बात नहीं वो होता क्यों नहीं, कि वो उसमें लगे पाप में रात दिन कसाई काटने में लगा है, भगवान का भजन आदि कर ही नहीं सकता। तो उनकी संतों की चिंता होती है कि इनका कल्याण कैसे हो, पर वो चिंता ऐसी नहीं, आपका जैसा दुख नहीं होता है, उसका दुख कल्याण करता है, भगवान को दुख पैदा होता है भगवान के। अगर वे संत ऐसा चाहते हैं उनकी कृपा से उनका कल्याण हो जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाले हैं भगत, तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुरसा की, राम सदा सेवक रुचि, भक्त होने उन भक्तों की रुचि। कुछ नहीं चाहते भगवान से, तो वो भगवान चाहते हैं कि कोई इनका काम मैं कर दूं, ये कुछ चाह ना करे तो इनका कल्याण कर दूं, ऐसी भगवान की इच्छा रहती है। तो उन भक्तों के चित्त में ऐसी दया आ जाती है, तो उसको भगवान कल्याण करने में अपना कर्तव्य समझते हैं और अपने को ऊर्ण समझते हैं कि मेरा ऋण चूक गया। एक बात याद आ गई, भी चार तो आएंगे, तीन बनने आए हैं, सबकी बातें कैसे कहे, एक बात भी पूरी कहे तो घंटा एक ही समय है सबकी, अब इतनी बात तो कैसे कह दे। एक बात कह देता हूँ, एक सज्जन आए वृंदावन, भगवान का भजन करने वाले, चिंतन में रात दिन भजन करने वाले वृंदावन आए। तो भगवान बिहारी राधा बिहारी जी गए वृंदावन, बिहारी जी के मंदिर में गए, मंदिर में गए तो दर्शन हो रहे हैं। वो कहते हैं मेरे को दर्शन नहीं होते हैं, कि सामने खड़े है नहीं भगवान। वो कहते हैं अब मैं हाँ में हम कह दूं तुम्हारे हमें मेरे को दिखते नहीं है। तो उसने आंसर कर दिया कि महाराज आप दर्शन नहीं देते मेरे को, सबको दर्शन दे रहे मेरे को दर्शन नहीं देते। तो भी दर्शन नहीं हुआ, तीन दिन उपवास किया। और भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सब कह रहे सामने खड़े हैं, देखो साफ साफ कह रहा चेहरा, कैसे नेत्र है, कैसा मुकुट है, कैसी पोशाक है, देखो। वो कह रहे मेरे को तो दिखता नहीं। उनकी ग्लानी हो गई, उसे ग्लानी हो गई भाई ऐसा जीवन अपने नहीं रखना है। भगवान के दर्शन नहीं, मंदिर में आते हैं दूर से चला कर आए और ठाकुर जी दर्शन ही नहीं देते तो जीने में क्या फायदा है। तो रात्रि में आधी रात वो उठे, जो सब सोए रहे ऐसे उठ करके वहाँ जा रहे थे जमुना जी में डूबने के लिए कि प्राण त्याग कर देना है। तो परिक्रमा में कई पैसे मांगने वाले बैठे रहते हैं, तो एक कोढ़ी वहां बैठा था, वो कोढ़ी वहीं सोया हुआ था, उसको नींद आई, नींद में ठाकुर जी ने सपना दिया कि तू मेरे से प्रार्थना करता है कि मेरी कोढ़ दूर हो जाए, मेरा सही ठीक हो जाए, क्या करूं, ऐसा करता है। तो आज जो कोई व्यक्ति आवे इधर से उसका पग पकड़ लेना और कहना मेरा उद्धार करो, मेरी कोढ़ दूर कर दो। तुम छोड़ना नहीं, जब तक कोढ़ दूर न हो जाए तब तक छोड़ना मत, ऐसा कह दिया। सपना खुल गया, वो बैठा ही था और वो सज्जन आए गंगम जमुना जी में प्राण देने के लिए, तो उनके पैर पकड़ गए, महाराज मेरी कोट मिटा दो। अरे तू मेरे को मत पकड़, मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे को ठाकुर जी दर्शन ही नहीं देते, दुनिया को दर्शन होते हैं बिहारी जी के और श्री बिहारी जी के, मेरे को दर्शन नहीं होते, तो मेरे को छोड़ के, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी कोट दूर कर दो, मेरे को ठीक कर दो, कोट ठीक हो जाए। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं तो इतना पापी हूँ, भगवान भी दर्शन नहीं देते, दुनिया को दर्शन देने वाले ठाकुर जी हमारे को दर्शन नहीं देते, दुनिया से अधिक पापी मैं ही हूँ, इस बात तुम मेरी मदद कर दो। कहते मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी कोट दूर कर दो, अब कह दो कि तेरी कोट दूर हो जाए। अरे कह दू कैसे, मेरे दस्ती नहीं ये बात, आशीर्वाद से हो जाएगा काम, मैं इतना पापी हूँ, बहुत हट करने पर देगा, छोड़ूंगा नहीं। तो फिर अच्छा भाई तू कह दो तेरी बोर्ड दूर हो जाए, ऐसा कहते ही मारे गलत बोर्ड में आंगुली आएगी उसकी, वो ठीक हो गया। तो उसने बात क्या है, उसको पूछा रे बात क्या है, कि महाराज मेरे को सपना हुआ, ठाकुर जी ने आदेश दिया कि एक आदमी आएगा उसको वो तेरी कोट दूर कर देगा, मेरे से तू प्रार्थना करता है, मेरे भक्त से कर, तेरी कोट दूर हो जाएगी। तो तेने किया, देख मेरी कोट दूर हो गई। तो मैंने समझा भी भगवान मेरे को भक्त मानते हैं, तब तो जमुना जी पूछे और चले भगवान दर्शन को, जमुना जी आदमी कल डूब जाएगी वो क्या जल्दी है, परंतु भगवान भक्त मानते हैं मेरे को, जो दर्शन ही नहीं देते। तो वो पाएगा सुबह दर्शन खुला, वो भी दर्शन करने के लिए गया, तो ठाकुर जी दर्शन हो गए। दर्शन हो गए तो महाराज ये क्या बात है, आज दर्शन कैसे हो गए, प्रार्थना करता रहा तो उसके हृदय में भाव आया कि तैने मेरी भक्ति की, परंतु कोई मांग तैने नहीं की, कोई मांग की नहीं, तो मैं तेरे को मुंह दिखा नहीं सकता, कुछ भी चाहे तो तेरी इच्छा पूरी करूं तब तो मुंह दिखाऊं, नहीं तो मैं सदा सर्वदा तेरे ऋण से दबा हुआ हूं, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। आज तेने एक बात कह दी इस कोट दूर कर दो, तो मेरा तैसा मुंह उजला हो गया कि मेरा ऋण उतर गया, एक बात तो मांगी कलम कम से एक कलम तो तेरी आई, कैसा कर लो तू, क्यों निष्काम निष्काम भजन ही भजन करता, कोई किंचित मात्र भी किसी तरह की कोई मांग तू नहीं रखता, और जन्म तेने से भजन बिता दिया तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, तो ऋणी होता है वो साहूकार को मुंह कैसे दिखावे। तो ऐसी बात है, अब तेरी एक बात आ गई, अब एक काम कर दिया तो मुंह दिखाने के लायक हुआ। तो भक्तों की रुचि भगवान रखते हैं, भक्तों के मन में आ जाती है ना बात, तो उनका कल्याण हो जाता है। वासुदेव सर्वम, जिसकी दृष्टि वास्तव में ऐसी है, तो जो दृष्टि पड़ेगा तो उसके मन में वासुदेव है, तो वासुदेव उनका दृष्ट है, उनका भाव है, वो काम करता है। इस वास्ते साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता साधव काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम सत्संग से बड़ा लाभ होता है, ऐसी महिमा शास्त्र में आई है। तो उन महात्माओं की है, आप समझ लोग ये मेरे जैसे ऐसे उनकी ये नहीं है। मेरे को कई कहते हैं कि महाराज आप भगवान भक्तों कल्याण कर दो, तो मैं तो ये कहता हूँ मेरे सामर्थ्य नहीं हो, क्या भगत हो, तो मैं कहता हूँ कि भक्तों की लिस्ट में मेरा नाम देखा है आपने, उसमें नाम देखा है आपने, क्या कहने का नहीं देखा, तो मेरे से क्यों ऐसा करते हो, क्या हमेशा मानते हैं? आप मानते हो तो ये आपका उदार भाव हुआ कि मेरा गुण हुआ, मेरे को तो टिकट हाथ में लिए हुए गाड़ी नहीं चलने देता, टीटी ऐसे मेरी अवस्था बीती है, अब आप ऐसा कहते हो तो उसी पर असर क्यों नहीं पड़ता, टिकट मेरे सेकंड क्लास का और खाक में एक मेरी पुस्तक वो खप्पर इतना था, कोई सामान नहीं था, दिल्ली से सजा रेवाड़ी में वो विवाह कट गया, सेकंड क्लास का टिकट था, आगे सेकंड क्लास में अटेंड ठहरो, बाबा ठहरो, थर्ड क्लास में जाता है, सेकंड क्लास के टिकट बनना था, भीत बजे मेरे को बैठने नहीं दिया। ये बीती हुई मेरी बात है, तो मैं कैसे मान लू कि मेरा बड़ा भारी हूँ, मैं कैसा हूँ बताओ। टिकट भी आया तो मैं कहता हूँ भाई हरा हरा टिकट नहीं, देख मेरे टिकट है पास में, ठहरो ठहरो तुम ठहरो ठहरो, अरुण उभर रहा है। फिर गाड़ी चलने वाली थी, वो इधर गया तो मैं चढ़ गया, चढ़ गया तो बैठू कहा, सब रुकी हुई सामने सीट पर, ऊपर बैठ गया तो तेरी गाड़ी चलते रही, बाबा जी बैठ गए, हाँ भाई वो बैठ गया। तो मैं, मेरा इतना अगर प्रभाव है तो टिकट ले, टिकट रहे तो बात अलग है, टिकट सही तो मेरे को बैठने नहीं दिया। तो ये आप मानते हो हम आपको बड़ा मानते हैं, तो आपकी सद्भावना हुई कि मेरे का गुण हुआ, इसमें आपका श्रेष्ठ भाव है, इस वास्ते पूजनीय तो आप हो, आदरणीय आप हो, जो दूसरों को ऊंची दृष्टि से देखते हैं। नीचा वो होता है दूसरों को छोटा देखता है, अपने को बड़ा मानता है, वो नीचा होता है, और अपने को साधारण दूसरे को बड़ा मानता है, ये उनका बड़प्पन है, उनकी श्रेष्ठता है, उनके भाव कितना उत्तम है। तो ये भाव आपका हो सकता है, मैं कर दूंगा, एक क्या मेरे, आप बिना हमारा कल्याण कौन करेगा। मैंने कहा मैं जन्मा ही नहीं तब भी कल्याण होता था, और मर जाऊं तो कल्याण होता रहेगा, केवल ये रीत हो कि मेरे जन्म के बाद मेरे से ही कल्याण होता है, तब ये कह सकते हो कि आप बिना मेरा कल्याण कौन करेगा। जन्मा ही नहीं तब भी कल्याण होता था, रीत चली आई है, और मर जाएंगे तो कल्याण होता ही रहेगा, फिर मेरे ऊपर ठेका कैसे हुआ ये कि मैं कल्याण करता हूँ। अगर कोई मानता है मैं कल्याण करता हूँ तो अभिमानी है, अहंकारी है, बिना अभिमान के कैसा ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम भगवान सुखी, अढ़ो जन्मी कौन सदृशो माया, मैं सिद्ध हूँ, मैं महात्मा हूँ, तो आशी संपत्ति के लक्षण लिखे गीता में, तो कैसे ही बात मानी जा सकती है। ऐसे दूसरे लोग देख रहे तो मेरे पर क्यों लादो महाराज, मेरी बात सुनो, बात सुनने के लिए तो मैं कहता हूँ, मेरे दर्शन से कल्याण हो जाए, कई लोग नमस्कार नहीं कराता हूँ तो चरण धूली देते हैं, धूल से कल्याण हो जाए तो मैंने छिप करके धूल सब कुओं में डाल दूँ जिसमें सबका कल्याण भी जस गई, क्यों मेहनत करूँ, क्यों कंठ दुखाऊ, क्यों इतनी मेहनत करूँ बताओ। ये है नहीं, ये आपका भाव है, हमारा भाव नहीं है, ये कहीं धोखा हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है शरणों संतों के चरणों की रुचि का बड़ा महत्व है, अगर कल्याण होगा नहीं तो फिर मेरे को कोष हो गए, शास्त्रों को झूठा मानोगे और नास्तिकता पैदा हो जाएगी, इसका नतीजा ये होगा। तो मैं नास्तिकता पैदा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आस्तिकता पैदा हो जाए अपने भी, आपके हमारा भी, तो ये हमने एक काम शुरू किया है, आपका कल्याण संत महात्माओं की आज्ञा से किया है, मेरे मन से नहीं किया है, मैं मन से व्याख्यान दे रहा नहीं किया है, ये आज्ञा किया है, तो संतों का तुम करो यही तुम्हारा साधन है, ये कहा उन्होंने कि तुम व्याख्यान सुनाओ ये तुम्हारा साधन है, तो साधन बताया है, मैं वक्ता होकर के गुरु होकर के बोलता हूँ ऐसी मेरी इच्छा नहीं है, परंतु पद तो वही है, क्या कहूँ, कहता तुम ऐसा अरे करता हूँ कैसा, गुरु बन करके बता रहा हूँ मैं, तो मैं गुरु बनना नहीं चाहता। बोधियंत परस्पर कथियंत मांगने तुष्यंति से रमनते च, ऐसे भक्तों के लक्षण बताए हैं, आपस में भगवत चर्चा करते हैं, इस बात से कहता हूँ नारायण 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 नारायण। अब दूसरे पर दूसरे की बात कहता हूँ, गीता में त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य उपार्जन निर्द्वंद्वो नित्य संतोषो निर्योग क्षेम आत्मान, ऐसा आया दूसरे अध्याय में, तो नित्य सत्वस्तो बताया, निस्त्रिय गुण्य निस्त्रुणों से रहित हो जाए, तो वहां निस्त्रिय गुण्य गुणातीत का नाम नहीं है। त्रिगुण्य विषया वेदा, वेदों के जो सकाम भाव भाग है उसकी निंदा की है, निष्काम की अपेक्षा सकाम भाव, यहां पुष्पिताम वासम प्रवदंते व्यवस्थिता वेद वादता पाठ नान 42, 43, 44, 42 उद्धार नहीं होता है। तो वहां पर त्रिगुणीय विषय भाग जिसमें सकाम ही सकाम का वर्णन है, ऐसा आपने सुना है वेदों के 100,000 मंत्र है, 80,000 मंत्र सकाम के हैं और उपासना के 16,000 और 4,000 है ज्ञान के ऐसे मंत्र है। तो 16,000 ज्यादा भाग सकाम भाग गई है वेदों में, तो वो वेद है, उस वेद की बात कहते हैं त्रिगुणीय विषया वेदा, जो उपासना और ज्ञान है उस भाग का नाम नहीं है, वहाँ तीनों गुणों का ही विषय करता है। तुम नेत्रगुणी पर तो मानो तो निष्काम बन जाओ, कामना मतलब ये नित्य सत्य वस्तु में स्थित रहो, तो स्थित रहना होता है ये साधक होता है, नित्य सत्य में स्थित रहते वो गुणातीत होता है, वो साधक नहीं होता है सिद्ध होता है। तो ये गुणातीत तो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, तो गुणातीत का वर्णन नहीं है, गुणातीत होने के लिए साधक का वर्णन है। या मैं पूछता हूँ इसमें सकाम भक्तों का वर्णन है, व्यवसाय आत्मिक बुद्धि कैसी होती है, 41 से 44 तक व्यवसाय तक बुद्धि का विवेचन है दूसरे अध्याय में, उसमें बात ये आई है। तो गुणातीत का लक्षण ये नहीं है। आज्ञा देते हैं निस्त्रीगुण्य भाव, तो निस्त्रीगुण्य होता तो उसको तू हो जाए ऐसा कैसे कहते। दूसरी बात, आज प्रातः काल 5 बजे वाले सत्संग में भक्ति को लोहे का कांटा बताया गया, जो जगत के कांटों को निकाल देती है फिर दो कांटों को दूर कर देते हैं। तो भक्ति तो साधन काल और सिद्धावस्था में भी सिद्धों को भी ग्राह्य ही है, उसे कांटा कहना क्या तात्पर्य। उसका तात्पर्य भगवान की तरफ लग जाओ, जो दृष्टांत और दार्शांत होता है उस दृष्टांत में एक अंश होता है बात बताने का, अगर वो सांगोपांग पूरा हो जाए तो दृष्टांत रहता ही नहीं, दार्शांत हो जाता है। तो तीनों गुणों को विषय करने वाले तुम निर्गुण बताओ, तो तीनों गुणों के विषय सकाम न हो निष्काम तुम बन जाओ, इसमें तात्पर्य होता है। तो वो भगवान की तरफ चलने में जो कामना संसार की इच्छा है बाधक है, वो इच्छा भगवान की कामना भगवान की इच्छा करने से रह जाता है। देखो एक मार्मिक बात है, इसका तत्व मर्म क्या है। साधन हम करते हैं भगवान की तरफ चलते हैं, तो साधक वही होता है जिसकी साधना करना है, साधन करने में चल रहा है, वो सिद्ध नहीं है। आपको इच्छित होगा जैसे इसमें भी आपके शक्ति, ये जो संसार की इच्छा और भगवान की इच्छा, ये दोनों ही संसार में आसक्ति वाले आसक्ति के ऊपर टिकी हुई है। भगवान की प्राप्ति की इच्छा भी संसार की इच्छा पर टिकी हुई है, संसार की इच्छा भी इच्छा पर टिकी हुई है। वो इच्छा मिटने पर संसार की इच्छा तो मिट जाती है, भगवान की इच्छा भी पूरी हो जाती है, फिर साधन नहीं रहता है। भोगों की संग्रह की जो इच्छा है, इस इच्छा के ऊपर ही संसार की इच्छा टिकी हुई है और इसके ऊपर ही भगवान भगवत प्राप्ति की इच्छा टिकी हुई है। तो भगवत प्राप्ति की इच्छा कब है, जब तो प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती तब तक संसार की इच्छा है और संसार की इच्छा ही संसार की इच्छा पर है, और संसार इच्छा सर्वथा मिट जाती है तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, पूर्ति हो जाती है। फिर इच्छा कैसे रहती है, जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो इच्छा रहेगी। तो संसार की इच्छा तो मिटती है और भगवान की इच्छा पूर्ति होती है। इसी को आज सुबह बात चली तो मैंने कहा वांट और डिजायर क्या है, अंग्रेजी पढ़े लिखे से पूछा मैंने, तो वे कहते हैं एक आवश्यकता है एक इच्छा है। मैंने कहा विवेचन ठीक करो, तो ठीक विवेचन कर नहीं सके। शरीर की आवश्यक रोटी कपड़ा मकान, इसकी आवश्यकता शरीर की है, ये वास्तविक आवश्यकता नहीं है, ये भी इच्छा में ही भरती है। सभी दोनों तरह के जो अंग्रेजी के अर्थ आए वो एक ही तरह चलते हैं दोनों। एक मानो अपन तात्कालिक भूख लगी भोजन कर दिया तो ये आवश्यकता कह दी, और धन मिला और फिर इच्छा हुई इसको इच्छा कह दिया, तो दो भाग इच्छा की दो भाग किए हैं। वास्तव में इसकी आवश्यकता है भगवान की और इच्छा है संसार की, ये है दोनों भेद वांट और डिजायर का। तो परमात्मा तत्व की इच्छा है वो संसार की राग बिना इच्छा कहाँ टिकेगी, संसार की राग पर ही भगवत प्राप्ति की इच्छा टिकी हुई है, और संसार वो राग मिट जाएगा तो संसार की इच्छा तो मिट जाएगी, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी, ना संसार की रहे ना परमात्मा की रहेगी। तो कांटा निकल गया था, तो वो संसार की इच्छा मिटाने के लिए भगवान की इच्छा बड़ी तीव्र होनी चाहिए, मुमुक्षा तेज होनी चाहिए, जिज्ञासा तेज होनी चाहिए, जिससे कि वो संसार की इच्छा मिट जाए। बस एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक नाम घनश्याम सातक तुलसीदास, अनन्य आसंत यंतु माँ अन्य चेता सत मई ए मन आदस्व मई सन्य से मत भरा अन्य अन्य नहीं हुई योगे न मई चान्य योगे न भक्ति व्यवचारणी, ये दो चार बार थोड़ा ही गा है। अन्य चिंतन, अन्य आशा, अन्य आशा, अन्य विश्वास, अन्य ममता, ये छूटनी चाहिए। ये छूटेगी एक भगवान की इच्छा होने से, तो कांटा निकल गया। अब कांटा फेंक दे, कांटा के तात्पर्य है ये भगवान की इच्छा संसार की इच्छा मिटाने में है। ये दृष्टांत पूरा कटे, कहीं भी नहीं घटेगा। कोई दृष्टांत दोगा उसका एक अंश ग्राही होता है, तो संसार की इच्छा मिटाने में तात्पर्य उसमें रहे, फिर भगवान की इच्छा कैसे रहेगी? वो कांटा रहे, वो उद्वाह का कांटा कैसे रहेगा, किस वास्ते रहेगा, क्या उसका मतलब होगा? वो कटे फेंक दिया, तो वो इच्छा जो परमात्म प्राप्ति की है वो इच्छा नहीं रहती। स्वभाव भजनम हरे, भगवान के भजन का स्वभाव होता है। जो महात्मा लोग बोलते हैं निर्गंथा, जो भक्त है वे कुरंती अहेतु भक्ति इतम भूतो हरे, अहेतु की भक्ति करते हैं, उसे हेतु नहीं होता, कोई कामना नहीं होता है। भगवान शंकर कथा कहते हैं, पार्वती सुनते हैं, क्या उनके शंकर की इच्छा है कोई, क्या पार्वती माता की कोई इच्छा है? वो बिना इच्छा ही चारों सनकादिक एक वक्ता हो जाते हैं, तीन श्रोता हो जाते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति की इच्छा है? भगवान ऐसे है जो महात्मा पुरुष होते हैं, तीनों कुछ अतीत हो गए हैं, उसको कोई इच्छा नहीं है, वो इच्छा भगवान का चिंतन करते हैं। कुरुंती अहेतु की भक्ति, वो बिना हेतु की भक्ति, स्वभाव भजन स्वभाव उनका पड़ा हुआ है, क्योंकि इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान ही ऐसे ही विलक्षण है। वो जीवन मुक्त है ना, तो उनको आकर्षण करने वाले भगवान है, समझे? मुक्त गणाकर्षी है भगवान, जीवन मुक्त गणाकर्षी, मुक्त पुरुषों के गण के गण समुद्र उनको खेचने वाले भगवान कृष्ण, इस वास्ते कृष्ण नाम है इनका, खेचते हैं। तो जीवन मुक्त पुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते नहीं है, करते रहती होती है, क्योंकि इससे बढ़कर कोई काम संसार में है ही नहीं। भक्ति का जो भक्ति में कोई ऐसी विलक्षण भक्ति है कि उसको अहेतु की भक्ति होती है, वो प्रेम होता है, वो अत्यधिक प्रेम होता है, वो प्रेम प्रत्येक क्षण वर्धमान होता है, वो बढ़ता ही रहता है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप ऐसा नारद जी महाराज ने कहा है, तो उनकी इच्छा कोई नहीं रहती, तो इच्छा मिटाने के लिए भगवान का भजन करते हैं। वो कांटा बताए तो कांटा बताने में नहीं, भक्ति कांटा है ऐसा नहीं है, मानो काम सकाम भाव को मिटाने में तात्पर्य है उसका, उसको भक्ति को कांटा बताना नहीं। साधन करने से, और चाहे ज्ञान का साधन करे, चाहे भक्ति का करे, चाहे योग का करे, वो साधन है तो वास्तव संसारी कामना मिटाने के लिए ही, तो वो कांटा निकालने के लिए है। अरे वो कांटा है तो वो तो आप साफ निकल जाता, फिर कांटा रहता ही नहीं, फिर ना संसार की इच्छा रहती, ना भोगों की इच्छा रहती, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है, संसार की इच्छा मिट जाती है, तो निरस्त हो जाता है। इस वास्ते भक्ति को कांटा बताना, लोग कांटा बताएगा जो जगह कांटे निकाल देती है, फिर दोनों कांटा दूर हो जाते हैं। ये तात्पर्य कांटा नहीं है, भक्ति की निंदा में तात्पर्य नहीं है, संसार के राग मिटाने में भक्ति कारण होती है। इस विषय को बताओ, जो आदमी जैसे समझ सके वैसे ही कहना है, उसे थोड़ा ही कहना है। अरे वो वास्तव में कांटा निकल जाता है, भगवान का प्रेम हो जाता है, तो फिर वहां संसार की इच्छा नहीं रहती। ध्रुव जी महाराज ने राजगद्दी पर बैठने की इच्छा की, राजा के गोदी में नहीं बैठने दिया, तो भक्ति करने लगे। जब भगवान मिल गए तो नाती प्रमाण राजी नहीं हुए, मन में दुख रहा कि मैंने कितनी गलती की जो राज्य की इच्छा की। भगवान से कहा, महाराज मैं नहीं चाहता। तो ध्रुव जी से भगवान कहते हैं, तुम्हें इस गद्दी पर 36,000 वर्ष राज्य करना पड़ेगा, तुम्हें इच्छा की है। ऐसे ही विभीषण के भी मन में इच्छा हुई, रावण ने कहा मम पूर्वशी तब सिद्ध सन प्रीति छठ मिल जाओ तार वहां जाओ। तो ऐसा बात सुनते ही वो आकाश मार्ग से गया विभीषण, क्योंकि तेरे तू कहता तू राजा है मैं तेरा भाई हूँ, क्या मेरा घर बनाऊ जीती जमीन भी मेरी नहीं है, मम पूर्वशी मेरे जगन में रहता है। तो उसके मन में आया अब मेरी जमीन होगी तभी आऊंगा, तेरी जमीन पग नहीं दूंगा कभी, ये मन में आ गया। आकाश मार्ग से गया तेरी पग नहीं दूंगा तेरी मार्ग पर। जाते ही भगवान का आओ लंकेश, पहले तो कुछ वासना रही परंतु प्रभु शरीर दर्शन के शरीर वासना बह गई। कहते मैं जानता हूँ तेरी इच्छा नहीं है तो फिर तेरे को राजतिलक दूंगा, क्यों दूंगा कि तेरे पर में इच्छा थी कि राजतिलक मैं मेरी जमीन उग जाऊंगा। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत सुर साखी, इस बार लव समुद्र का जल राजतिलक दे दे आज रंग विभीषण राजतिलक दे दिया। अब शत्रु का भी तो पता ही नहीं लगा है पूरा कितनी शक्ति है कैसा है, युद्ध होगा हार होगी इतनी जीत होगी क्या होगा, तो मैंने कह दिया दे दिया। तो मन में इच्छा वो रहती है वो निकलती नहीं वो पूरी हो जाती है वो भी, पर संसार की पूरी का कोई सुख नहीं होता उसको, वो भी पूरी हो जाती है, हो जाए ना हो जाए कोई परवाह नहीं है। विभीषण के थोड़ी थे कि भाई राज मिल जाए तो राजी हो जाएगा, राज नहीं मिले तो नाराज हो जाएगा। राज क्या चीज है, भगवान के दर्शन हो गए भगवान ने कृपा कर दी, उसने आओ लंकेश कह दिया और इससे बढ़कर और क्या होता, को लंकेश होने का थोड़े महात्म्य है, भगवान कृपा करते हैं अपने को मेरा सखा मानते हैं इससे बढ़कर क्या होता है। सखा तीन तरह के हैं भगवान के, एक साधक सखा है, एक सिद्ध सखा है और एक पामर जीव सखा है। निषाद राज वो सखा है वो जीवन मुक्त सखा है, विभीषण है वो साधक सखा है और सुग्रीव वो पावर सखा है, विषयी पावर लोलू उसको सखा। इसका तात्पर्य क्या किया, भगवान कहते मेरी तरफ आता है वो सकाम हो निष्काम हो साधक हो सिद्ध हो मेरे बरोबर बनाता हूँ उसको, विषयी पावर भी भोगों में लगा हुआ भी मेरे शरण आ जाता है तो मैं वैसे ही शरण देता हूँ जैसे सिद्ध को दे जैसे साधु को दे ऐसे मैं शरण देता हूँ। तो भगवान अपनी उदारता बताते तीनों के सहित। निषाद राज ने तो आते ही कहा हमारे घर में पधारिये महाराज, हमारे घर पवित्र कीजिए, आज संसार मेरा नाम हो जाएगा, निषाद राज के घर भगवान आए आप पधारो। और विभीषण ने कहा जब राज सब विजय होगी तब कहा हमारा श्रमण सब ये समर सम चीजें आइए अपने घर पर आ रही है, आपके जितना परिश्रम हुआ है वो परिश्रम दूर हो जाए बधारिये। सुग्रीव ने कहा ही नहीं कि मैं घर चलो, ना पहले कहा ना पीछे कहा, बताओ आप इतने बैठो रामायण पढ़ने वाले, वो तो पामर था विषय भोगी था। जब तो भगवान ने कहा कि सुग्रीव सिद्ध मोरी पिसारी पावा राज कोष पुर नारी, चार चीज मिल गई तो मेरे को भूल गया क्योंकि इन चीजों के लिए वो करता था। इस बार विभीषण ने कहा कि महाराज ये जो काम क्रोध लोभ है ये तो आप ही कृपा से मिटता है, नारी नयन स्वर चाहे न लागा घोर क्रोध तम शास हो जागा। और अगर बताया सोस तुम समान रघुराया, ये साधन से नहीं चाहिए, ये साधन से तुम्हारी कृपा में चाहे रघुराय आपकी कृपा में, तो मेरे में दोष है आपकी कृपा नहीं मैं क्या करूं, मेरा मैं तो भीषण दोष निर्दोष शुद्ध हूं मैं तो दूध का दया, ये तो तुम्हारी कृपा से मिटता है और आपने कृपा नहीं करी तो मेरे नहीं आशुति। ये भोगी काम होता है कि भगवान ऐसे हमारे पाप करवाते हैं, भगवान ऐसे हमारे को भटकाते हैं, भगवान ही करते हैं हम क्या करें, ये अत्यंत मूढ़ का अज्ञानी का निश्चय होता है, ये साधक का नहीं होता सिद्ध के होता ही नहीं। तो ऐसे वो भगवान अपना समान दर्जा देते हैं, बोलो क्या करना चाहिए, विभीषण आया है तो सिर बांध कर रखना चाहिए इसको, जाने नहीं जाए निषाद कर्म आया काम रूप के कारण भेद लेने वाले आया है, तो भगवान के उभय भांत ले जाओ, मेरे शरण ले आओ सखा में ये तो ले आओ, अपने भेद ले तो ले आओ, अपने क्या भेद ले क्या करेगा अपने क्या बिगाड़ सकता है, उभय से हमारे ले आओ। सखा सुग्रीव तो भगवान ऐसा करते हैं, तो भगवान ने तीनों को सखा बनाया, सबको ये बता दिया कि तुम अपने को मित्र बारे में अयोग्य मत मानो, हमारे कामना है, हमारी चाहना है, तो चाहना होने पर भी मेरे यहाँ घर में जगह है, सकाम हो, निष्काम हो, पापी हो, अभी शुद्ध आचारो भजदे मन भाग, दुराचारी में शुद्र चाहिए, दुराचारी में बढ़िया सांगोपांग दुराचारी होना चाहिए, जिस दुराचार में कमी न रहे, ऐसा दुराचारी भी मेरे भजन में लग जाता है तो साधु मान लो, साधु एवं मंतव्य, ये मंतव्य आज्ञा है, भगवान का हुक्म है, उसको साधु मानना चाहिए तुम्हें। ये मानना कहाँ होता, जो दिखता नहीं तो मानना होता, दिखे तो माने क्या, साधु का तो साधु मानो, साधु माने क्या, साधु है भगवान के अपेक्षा दुराचारी, पर अन्य भाव से केवल मेरे भजन का ही जो भाव है ऐसे ही लग गया है, उसको तुम साधु मानो। अभी तक साधु आया नहीं, साधु हुआ नहीं है, पर निश्चय पक्का कर लिया है कि भगवान का भजन ही करना है, उसको भगवान के साधु मान लेना चाहिए, सम्यक व्यवस्थित हो ही सा, उसने निश्चय कितना पक्का कर लिया है, इस निश्चय के रहते हैं प्रभु से चूक किए की कर्त श्रुत सौवार ही है किए की बात नहीं देखते, हृदय के भाव को देखते हैं, कर्म स्वरूप सौवार ये की हृदय में बात है, उसको भगवान सौवार याद करते हैं। सौवार क्यों करते हैं, कर रहते हैं प्रभु से चूक किए कि चूक की भगवान याद नहीं रहती, भगवान के मैं भूल रह जाऊं, जो ज्यादा भूलता वो सौवार याद कर दो, श्लोक एक कर दो, चेता सत्यम योग मांगे, सौवार याद हो जाता है, तो भगवान सौवार याद करते हैं, जैसे चूक भूल जाऊं, जैसे भूल न जाऊं कहीं, ऐसा पक्का है, इस बात कर्त स्वरूप सौवार ये की हृदय की बात वो करते हैं, तो हृदय में भाव हो जाता है, भगवान बड़ा असर करता है, सम्यक निश्चय कर दिया है, अब भजन ही करना है और कुछ नहीं करना, संसार में कोई सुख नहीं लेना, ना संग्रह करना है, ना भोग भोगना है, हमारे ये करना है ही नहीं, केवल भगवान में लगना है, इतने मात्र से परम शुद्ध हो जाता है, साधु ने उसे मंतव्य साधु मान लेना चाहिए उसको, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो ही सर, इस वास्ते व्यवसाय एक है, व्यवसाय बुद्धि एक होती है, अनंत व्यवसाय अब व्यवसाय योग्य अनंत बहुत सगा वाली बुद्धि होती है, तो भगवान में लग गया उसका एक निश्चय होता है, अटल निश्चय होता है, ये 41 से 44 तक का प्रकरण है, वहां त्रिगुण विषय निश्चय गुण हो गया है, तो उसका निश्चय एक हो गया, भगवान की तरफ ही चलना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, नंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तुमंतु लक्ष्मी समा विशद गुआ यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविशन्ति पतङ्गं धिया। कर्य निंदन दुनीति निपुणा, भगवान के भजन में लगे तो भजन में लगने से अच्छे अच्छे नीति निपुण अच्छे अच्छे सज्जन पंडित समझदार भी निंदा करे तो निंदन तो निंदो करो, कौन निंदा करो, निंदन तु नीति निपुणा यही वास्तव, कहते तुम भजन में लगे लोग बहुत प्रशंसा करते, वाह बहुत ठीक है, तो बड़ा अच्छा है, भजन में लगाया कि नंदा ने प्रशंसा करे, प्रशंसा करो, हमें निंदा प्रशंसा मतलब नहीं है, हमें तो भगवान की तरफ से आता है, नंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु और लक्ष्मी समावेश, लक्ष्मी आ जाए गच्छ तो आए थे, भजन करने से बहुत लक्ष्मी आ गई तो हमें भजन करना है, और महाराज थाली रोटा बिक जाए, रोटी नहीं मिली तो हमें तो भजन करना है भाई, हमें तो भजन करना है, हमें ना तो दरिद्रता की बात है ना धनवत्ता की बात है, अद्यैव मे मरणम अस्तु, आज मर जाओगे भजन करोगे तो अभी मर जाओ, आज में भी अभी मर जाओगे, कि तुम वर्षों तक जीवित रहो तो अच्छी बात है, हमें जीने मरने से मतलब नहीं, हमें तो मतलब भगवान से है, भगवान का भजन करते है, उसने कभी टलते ही नहीं, ऐसा निश्चय हो गया तो भगवान के तो संत हो गया, वो अब नहीं दिखे तो क्या दिख जाएगा, समय पर दिख जाएगा, और दिख दे क्षप्रम भवति धर्मात्मा, यू धर्मात्मा हो जाता है, निश्चय पक्का कर लेने पर, हम लोगों में तो देरी क्यों लगती है, एक निश्चय नहीं है, झुलमुल होते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पदार्थ हो इनकी इच्छा हो जाए धनवान बन जाऊं, कभी मैं निरोग हो जाऊं, कभी मेरी लोटी बेटी का ब्याह हो जाए, कभी मेरे धन मिल जाए, अरे भजन करता है, अरे कामना भी करता है, तो लुटकता रहता है बीच में, थप्पड़ खाता है, एक निश्चय है चाहे बेटी कुमारी रह जाए, कुछ भी रह जाए, हमें तो भगवान को भजन करना है, दरिद्रता रह जाए, कुछ भी हो जाए, सुने नहीं सत्संग करो, सत्संग करो, हाथ लोटे बिक जाए तो ही सत्संग करो, लोग आदर करो सत्संग करो, निरादर करो सब ठुकरा हो तो भजन को सत्संग करो, अपने वो ठुकराना आदर करना इसमें वो नहीं लगता है, बद्री नारायण जिनको जाना है, रास्ता बढ़िया सुगम मिल जाए, बदलों की छाया आ जाए, जंगल के पुष्पों की सुगंध आती रहे और सहा बड़ा दिशा रास्ता चढ़ाया जाता है तो भी बदलाव जाता है, और चढ़ाई आ जाती है जोर से घाम दबता है, मैले की दुर्गंध आ रही है तो क्या वो बदलाव छोड़ देगा? ये तो रास्ता है, कहीं सुख है कहीं दुख है, आता है क्या सुख दुख की गिनती है, और क्या इसका आदर करना है? अपने तो भगवान की प्राप्ति करना है, न गड़े यदि दुखम न सुखम, वो सुख दुख गिनते ही नहीं, कितनी वृक्ष बात है समझे, माने स्वीकार्यार्थी न गड़ना यदि दुखम न सुखम, सुख दुख गिनते ही नहीं, मतलब स्वीकार्यार्थी अपना काम करना है, भजन करना है, तो उसके मन में सुख और दुख का कोई असर नहीं पड़ता, अगर सुख और दुख का असर पड़ता है तब तो भजन नहीं है, वो भगवान का भक्त नहीं है, वो तो सुख का भगत है, तो सुख के भगत तो सूअर भी होता है, कुत्ता भी है, गधा भी होता है, इसमें क्या अलिखता हुई, क्या मनुष्य हुई, शूकर कुकर ऊंट खर बड़े पशुवन में चार, तुलसी हरि के भगत भी ऐसे ही नरनार, क्या मनुष्य है उनमें, तो सुख दुख का कोई बड़ा नहीं होता, सम दुख सुखम धीरम सोमृत पाए गर्भवते, सुख दुख है समय कृतवा, सम दुख सुख है स्वस्थ, न तुल्य निंदा स्तुति मौने, तो मानाप माने उस तुल्य तुल्यो मित्रादि पक्ष हो, विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण गव्य हसी सुनिचे स्वभाग्य पंडित समदर्शी ने, वो समता है जीवन में, राग होता है द्वेष होता है हर्ष होता है शोक होता है, क्या संसार में रहो शोक करे क्या राग करे क्या अच्छा माने क्या बता माने, इससे हमें मतलब नहीं है, आपके जिससे मतलब नहीं है, कूड़ा कचरा पड़ रहा है बढ़िया चीज पर चले गए आगे, कहीं कूड़ा कचरा तो क्या फर्क पड़ा, अपने यहाँ कोई घर नहीं बनाना है, अपने तो आगे चलना है, अब इस रास्ते में शब्द भी गाय भी आ जाए, शोर भी आ जाए, सामने गधा भी आ जाए, कुत्ता भी आ जाए, रास्ते में आते रहते हैं, हमें क्या मतलब है, इससे कोई राजी होना नाराज होना है, अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो सच्चे जैसे परमात्मा की तरफ चलने वालों को इन बातों की कोई परवाह ही नहीं होती, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो फिर कोई परवाह नहीं, सुख आवे दुख आवे संपत्ति आवे विपत्ति आवे, आदर करे लोग निरादर करे, इनका कोई मूल्य नहीं है, इनका मूल्य होता है आदर में राजी होता है निरादर में नाराज होता है, तो भगवान का भक्त नहीं है वो शरीर का भक्त है, और निंदा स्तुति में राजी नाराज होता है तो वो नाम का भक्त है, नाम को लेकर निंदा स्तुति होती है, आदर निरादर शरीर को लेकर होता है, तो शरीर का भक्त हुआ तो आठ मास का भक्त है वो भगवान का भक्त थोड़ा ही है, ऐसे धन आवे तो राजी हो जाए धन से नाराज हो जाए तो धनदास है भगवतदास थोड़ा ही है, ये संसार में अनुकूल ये कोई मूल्यवान चीज है, न धनवत्ता ठहरती ना निर्धनता ठहरती, भगवान वहां धनवत्ता निर्धनता का कोई मूल्य है क्या, भगवान के तो भक्ति का मूल्य है भजन का मूल्य है, इसमें संसार की परिस्थिति अच्छी और मंदी क्या चीज है, तो सुख दुखे समय कृत्व लाभालाभ समान कर्तव्य युद्धा नहीं पाप मानसिक पाप नहीं लगेगा, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाते हैं वे भक्त होते हैं, कहते साधक है सत्संग आदि सुनकर साधना में तीव्रता से कई साधक लग जाते हैं, परंतु कुछ काल के बाद कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि साधना में उत्साह मंद पड़ जाता है, ध्यान देना बड़ी बढ़िया बात पूछी, वो क्यों पड़ जाता है कि भजन करने से वो मन में भाव बदल भत्संग से ऐसे हो जाएंगे और हम ऐसे महात्मा हो जाएंगे ऐसे संत हो जाएंगे इतना लोग आदर भी करेंगे हम सब उठेंगे सब श्रेष्ठ हो जाएंगे, ऐसी न जाने कितनी कामनाएं भर लेता है, और वो भजन करते होती नहीं है तब जिला भजन कोई हुआ तो नहीं, इतना दिन भजन करते हो गया इतना सब करते हो गया इतना सत्संग करते हुआ कुछ हुआ नहीं छोड़ो इनको, तो भीतर में कूड़ा कचरा भरा है, अगर सच्चे हृदय में लग जाए तो दुख आवे चाहे सुख आवे भजन ढीला थोड़ी होता है, भजन तीव्रता से बढ़ता है, मन कामना रहती है ना मन में, अरे वो कामना पूरी होती नहीं, वो कैसे तुम्हारी कामना ज्यादा बैठी है वो पूरी हुई नहीं, तो भगवान का भजन करके तुम कामना पूरी करते हो तो ये तो पत्थरों से हीरों को फोड़ना है, हीरों को पत्थरों से फोड़ा करते हैं, कभी भगवान का भजन है उसे तुम चीजें चाहते हो मान चाहते हो आदर चाहते हो महात्मा बन जाए संत बन जाए जीवन मुक्त बन जाए लोग आदर करे लोग मेरे को बड़ा समझे, ये भक्ति का फल है ये मूर्खता का फल है, भगवान का भजन होना चाहिए, सुख के माथे शिल पड़ो जो नाम हृदय में रह जाए बलिहारी वह दुख की जो पर नाम जपाए भगवान के नाम का पर जप होता है चिंतन होता है वो दुख है जो बड़ी बढ़िया चीज है। सुख और दुख क्या चीज है वो सुख क्या काम का गोस्वामी जी कहते हैं अंजन कहा आंख जही फूटे जिस अंजन से आंख फूट जाए अंजन क्या काम का। ये जो संसार के संबंधी है ये आदर करे निरादर करे इसे क्या मतलब है ये हमें मतलब ही नहीं इंसान धन मिले निर्धनता मिले खाने को मिले रोटी मिले न मिले ये शरीर के भक्त होते हैं उनकी चिंता होती है भगवान की भक्त की चिंता होती है नहीं मिले क्या मर जाएंगे तो रोटी खा कर नहीं मरेंगे पर तो रोटी खाते खाते ही मरते हैं प्राय आदमी तो मरना तो रोटी खाओ तो मरना है न खाओ तो मरना है तो न खाने में मिले तो इसमें क्या बाधा क्या हुई कि मर जाएंगे तो मरना तो पड़ेगा ही अब भूखा मर मर जाओ हर क्या है नई नरी आफत क्या हुई नया नया नुकसान क्या हुआ जो होने वाला हुआ नया नुकसान कुछ हुआ ही नहीं तो उनके परवाह नहीं होती इन बातों की वो परवाह करता है वो वास्तव में केवल भगवान का भक्त नहीं है तो उनका भजन ढीला पड़ जाता है उसमें मंद पड़ जाता है गति में मंद पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कामना कारण होता है मन में कोई कोई इच्छा है पहले अटल लगाते हैं थोड़े जीवन मुक्त हो जाएंगे सिद्ध हो जाएंगे फिर हम कह जैसे पसंद हो जाएगा लोग हमारा आदर करेंगे पढ़ाव करेंगे हमारे को पुष्प फूल चढ़ाएंगे फूल चढ़ाएंगे चंदन चढ़ाएंगे ऐसा अरे भजन गति कई दिन हो गया कोई पूछता ही नहीं कुछ नहीं कहता बोले क्या हुआ उतरे नहीं कुछ कुछ हम बिल्डिश हो जाएंगे कोई पाखे आ जाएंगे भजन करने से ऊपर क्या दिखेगा भीतर का भाव होगा वो अटकल लगा देता है पहले तो उसका मन पड़ता है हमें तो भजन करता है भाई हमने गांव में देखा है हल चलाते हैं काल पड़ गया दूसरी वर्षा होती फिर हल चलाता है फिर काल पड़ गया तीसरे वर्ष वर्षा होती फिर वो तो हल चलाता है हमें तो हल चलाना ही है चाहे विधान हो चाहे न हो हम तो काम करना ही है। फले शक्तो निविद्यते भगवान कहे फल में आसक्ति वाला बन जाता है बेचारा तो फल की इच्छा पूरी कर लेते उनकी दशा ये होती है। साधु कहते पुनः तीव्र कैसे हो कामना मत रखो कोई इच्छा नहीं है इच्छा नहीं है भजन करने वाले ऐसा होता तो बढ़िया बढ़िया बात है। एक कहानी सुनी है कि एक संत थे वो गए चलते चलते एक जाट था खेती करने वाला कृषक उसके यहाँ पर गए उसने कहा कि तुम जब क्या करो मारा ले मारा ले मारा फेरा करो रोजीना तो मारा फेरती फेरती उसकी भैंस मर गई भैंस मर गई तो लोगों ने कहा अरे ये माला का फल देख माला करी तो देख भैंस मर गई तेरी तो मैं माला छोड़ो अब बेचारे संता ने कहा फिर क्या करूं कैसे करूं फिर संत आ गए कि महाराज लोग कहते थे माला फिर उसकी भैंस मर जाती है तो तेरे भजन घर से भैंस मर गई तो संत ने कहा एक भैंस मरती है फिर नहीं मरती तो किए जा ये पहला कोई टैक्स लगता है लग गया भैंस मर जाए ये कुछ कारण है पर लगा लेते ऐसा ए भाइयों बैठी है छोड़ने से जिने को ली जो मर गया इस बार जिने मतलब अब मरना तो जिने को लेता तो मरता न तो मरता ही था तो अब जिने लड़ने से मर गया ये जिने को कोई जहर है जो लड़ने से मर जाए ऐसी अठोल लगा लेते हैं उनकी फिर भजन में कमी आ जाती है तो भजन में कमी आती है मूर्खता से हमें इन बातों को देखना ही नहीं है मांदा पड़ जाए बीमारी ज्यादा कि भजन करने से बीमार हो जाता है भजन करने से देखो दरिद्री हो गया ये भजन नहीं करते तो ठीक था भजन में लगा दरिद्री होगा बेटा पोता मर गया उसका अब भजन छोड़ो अपने तो भजन बेटा पोता अटका लगा था साथ में ये बिल्कुल मूर्खता की बात है नाशवान हुआ विनाशी में क्या लगावे तो वो तो सच्चे हृदय से भगवान में लगना है ऐसा लाभ हो चाहे कुछ भी हो सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय तथो युद्ध भगवत के समता करो समत्व योग उच्चते सिद्धि सिद्धि समभूत सिद्धि असिद्धि में सम परमात्मा प्राप्ति हो तो न हो तो हमें अपना भजन करना है हमें क्या मतलब है भगवान मिले न मिले अपनी मर्जी उनको घर पर रहो अपने हम तो भजन करेंगे सब न मिले तो मत मिलो जन्म कोटि नगर नगर हमारी बरो शंभु न तो रहा कुमारी ये होता है भक्ति का सिद्धांत जो पार्वती जी करके दिखाया समझे तदूर नारद कर उपदेशु आप कहे शतवार महेशु भगवान शोध कर कह दे कि मैं नहीं मिलूंगा तो मैं तो भजन छोड़ूंगा तदूर नारद कर उपदेशु आप कह रहे सतवार मही शंकर वेद क्या होगा, जन्म कोटि लगे अगर हमारी, तो ये भजन होता है निष्काम, संसारी कामना औषध मिलाता नहीं है। अब कामना पूरी होगी तो क्या विलक्षणता होगी, अधूरी होगी क्या है, वो पूरी होगी वो मिटेगी, अधूरी रहेगी वो मिटेगी, तो मिटने वाली चीज है। इसके लिए खूब उद्योग करते हैं तो मर जाते हैं, क्या मिला बताओ। मृत्यु समय खो दिया, परमात्मा की प्राप्ति का अवसर आया था, उसकी उपेक्षा कर छोड़ दिया, तो गलती होती है। अपने तो लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, आदर हो निरादर हो, निंदा हो स्तुति हो, इनकी तरफ देखना ही नहीं है। तो निस्त्रिगुण पर यही अर्थ है, मन कामना कोई है ही नहीं हमारे, हमें निष्काम भाव से भजन करता है, अपने काम में लगा है, कोई हो जाए जो हो जाए। अर्जुन को कहा तुम विचार मत करो, सिद्धि सिद्धि समूहभूत सिद्धि सिद्धि और निर्विकार है, समय श्रद्धा और सिद्धि, तीन बार कहा है भगवान गीता में। तुम्हें जीत हो जाए चाहे हार हो जाए, हमें तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमें सिद्धि सिद्धि क्या लेना है, कर्तव्य अपने करेंगे इसी तरह से। छात्र धर्म है क्षत्रिय का और युद्ध आ गया सामने, स्वर्ग द्वार उपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभंत युद्ध विदेशम, ऐसा युद्ध कहाँ मिलता है, चाहे नतीजे कुछ भी हो नतीजे तो फल शक तो निबद्ध थे, फल के चावल बनता है। तो ऐसे भक्ति मौली पड़ती है, मंदी पड़ती है, तो भाव सकाम है, अटकल लगा देता, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, महात्मा बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, लोग सब आदर करेंगे, महात्मा बन जाएंगे, अब आदर कर, हाँ हमारी भक्ति हो गई, ये कोई कसौटी है। अब निरादर कर तो भक्ति वाली होगी हमारी, आदर करे तो भक्ति होगी, ये बिल्कुल लक्षण नहीं है। इस वास्ते भक्ति मंद पड़ती है, सकाम भाव लगाओगी, निष्काम भाव से भजन करना है, हमारे स्वभाव भजन में भगवान में लगता है। मैं तो भगवान शंकर कथा सुनाते हैं, पार्वती जी सुनती है, अब कथा पूरी होगी, भेंट पूजा हुई नहीं, क्या हुआ वहां इतनी कथा करी भेंट पूजा ही नहीं, तो कथा का मतलब भेंट पूजा ज्यादा आना ये तात्पर्य होता है। लोग ऐश्वर्य लगाते हैं ज्यादा भेंट आ जाए, कथा बहुत बढ़िया हो जाए, साधारण होगा मामूली भेंट आई है, अब कथा हुई रुपये में तोलते हैं, क्या रुपये में तोलने के लिए कथा सत्संग है, पर रुपयों की महत्ता है मन में, अब दूसरी महत्ता उनकी जस्ती ही नहीं, सबसे रद्दी रुपया, रुपये से रद्दी चीज कोई दूसरी है नहीं। मेला काम आता है, पेशाब काम आता है, रेत काम आती है, कंकर काम आते हैं, पत्थर काम आते हैं, रुपये कोई काम आते ही नहीं, क्या काम आते हैं बताओ, रुपये रुपये से चीज ला वो चीज काम आती है, रुपये खुद काम नहीं आता है, खुद मेला अच्छा है जो काम आता है, खुद सूर खाता है उसको, रुपये को सूर खा रही, कुत्ता खा रही, गधा खा रही, कैसे काम आ गया, अब उसको महत्व दे दिया, ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट का महत्व हो गया, सबसे रद्दी चीज का महत्व हो गया, बड़ा भारी रुपया, ओहो रुपया रुपया, टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम यसे गए टका नाते हा टका ठक टका टको नाम देवे जो शत्रु सो तो मित्र हो तो टके बिना मित्र सो तो शत्रु सु कहावे है टका कोई नहीं है हलो मिलो सोलो मिलो टके बड़े आवे है भगवान की भगत है टको की भगत है रामदास है धनदास है धन कोई बुरी चीज नहीं है। देखो एक मार्मिक बात बताते हैं, अब समय पूरा हुआ क्या बताओ, एक मार्मिक बात, कोई अवस्था कोई वस्तु कोई व्यक्ति हो सदुपयोग श्रेष्ठ है दुरुपयोग खराब है, वस्तु चीज कोई खराब है ना अच्छी है, सदुपयोग किया जाए ठीक तरह से तो कल्याण हो जाएगा, दुरुपयोग किया जो पतन हो जाएगा। धन का सदुपयोग करो कितने कल्याण हो जाए, कितना कोई चीज मिल जाए, कितना का उपकार हो जाए, धनी बनकर अभिमान करो कितना का दुरुपयोग हो जाए, बड़े धनी आदमी बाजार बाजार मंदा कर रहे बेचना हो तो बस गीता रो चेता रो सुल्ला घटनार एकल हटो पानी और चारों नरक द्वार, एकल हटो पानी और बाजार कर दिया मंदा, तो मंदा कर दिया क्यों माल सब इकट्ठा कर दिया अपने, फिर जा तेज तेज हो जाते बेचेंगे तो नफा खूब हो जाएगा, तो राक्षस असुर की तरह है वो लड़ क्या फायदा हुआ, ये दुरुपयोग धन का धन के द्वारा सब सदुपयोग है, तो अवस्था वस्तु कोई वाद स्वरूप से न बढ़िया न घटिया है, दुरुपयोग खराब है, सदुपयोग कल्याण करने वाला है। नारायण नारायण नारायण।